Nonga Arnold Joseph टैनबी जीवन वृत्त। टैनबी का जन्म अप्रैल 1889 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम हेरी वाल्पी टैनबी तथा माता का नाम सारा एडिथ टैनबी था। इनका परिवार अत्यधिक सुसंस्कृत और समृद्ध था। इनकी माता ने स्टोरीज फ्रॉम स्कॉरिशस हिस्ट्री नामक ग्रंथ की आय से बालक टैनबी के लिए एक ध्याय की व्यवस्था की। रात्रि को सोते समय माता ने उन्हें ब्रिटेन में सीजर के आगमन से वाटरलू के युद्ध तक का इतिहास बाल्यावस्था में ही टैनबी के मनःपटल पर अंकित कर दिया। टैनबी की शिक्षा विंचेस्टर बेलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में यूनानी तथा लतानी साहित्य की पुराने ढंग की शिक्षा में दी गई। 1896 से 1911 तक इन्होंने प्राचीन यूनानी रोमन संस्कृति और इतिहास का अध्ययन किया। 1911 ईस्वी में अपनी शिक्षा समाप्त कर टैनबी एक वर्ष के लिए अंग्रेजी पुरातत्व विद्यालयों की ओर से एथेंस और रोम की पुरातन सामग्री का अध्ययन करने के लिए यूनान की यात्रा की। 1912-1915 ईस्वी तक बेलियोल में अध्यापक रहे। सन 1915 ईस्वी में टैनबी विदेश मंत्रालय के राजनीति अनुसंधान विभाग में तुर्की मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त हुए। 1919 में पेरिस के संधि सम्मेलन में अंग्रेजी शिष्टमंडल की विदेशी शाखा के तुर्की विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। 1919 से 1924 तक टैनबी लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में वर्तमान यूनानी भाषा और बाइजेंटाइन विषयों के आचार्य रहे। 1925 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के संचालक नियुक्त हुए। 1936 से 1946 तक पुनः विदेश मंत्रालय के अनुसंधान विभाग के संचालक रहे। इसके बाद अपनी पत्नी सुश्री वेरोनिका टैनबी के साथ इंटरनेशनल हिस्ट्री लंदन में शोध आचार्य रहे। कृतियाँ टैनबी की प्रमुख कृतियों में ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट द वेस्टर्न क्वेश्चंस इन टर्की एंड ग्रीस ए जर्नी टू चाइना ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉर एंड सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल अ हिस्टोरियंस अप्रोच टू रिलीजन डेमोक्रेसी इन एन एटॉमिक एज ईस्ट एंड वेस्ट अ जर्नी राउंड द वर्ल्ड नेशनलिटी एंड वॉ तथा 1924 से लगातार वार्षिक सर्वे ऑफ इंटरनेशनल अफेयर का संपादन है। पृष्ठ संख्या 113। परंतु उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री है जो 92 भागों और 10 जिल्दों में प्रकाशित है। इसमें विश्व इतिहास की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन है। सभ्यता का इतिहास दर्शन प्रोफेसर टैनबी का इतिहास दर्शन इतना जटिल एवं विस्तृत है कि उनके सर्वांगीण पर्यवेक्षण के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ अपेक्षित है। उनका मत है कि इतिहास केवल शताब्दियों अथवा महाद्वीपों के वृत्तांत का इतिहास नहीं वरन सभ्यताओं का वृत्तांत है। टैनबी का यह आधारभूत विचार है कि ऐतिहासिक अध्ययन की सबसे छोटी बोधगम सुबोध गम्य इकाई संपूर्ण समाज होता है, न कि एक पक्षीय रूप से निर्धारित। उनके कुछ अंश जैसे आधुनिक युग के राष्ट्र राज्य अथवा यूनानी रोमन युग के नगर राज्य द हिस्टोरियन शुड स्टडी नॉट द हिस्टोरी ऑफ द नेशन और कंट्री बट दैट ऑफ अ सिविलाइजेशन। इस प्रकार टैनबी ने इतिहास की इकाई राष्ट्र को न मानकर एक अधिक विस्तृत क्षेत्र को माना है और उसका नाम सिविलाइजेशन रखा है। यद्यपि टैनबी के साहित्य में इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती है, उन्होंने अपने एक लेख में इसके आशय को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है कि सभ्यता से मेरा अभिप्राय ऐतिहासिक अध्ययन का वह लघुतम भाग है जिस पर अपने देश के इतिहास को समझने की चेष्टा करते समय मनुष्य की दृष्टि पहुंचती है। सभ्यता की समीक्षा करके उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सभ्यता का उत्थान पतन होता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। सभ्यताओं के संपर्क से उच्च धर्मों का जन्म होता है। अतः संपूर्ण मानव का ऐतिहासिक अध्ययन सभ्यताओं के संदर्भ में होना चाहिए। अनुभववाद। टैनबी ने स्पेंगलर की प्राग अनुभव पद्धति की आलोचना की है और अपने दार्शनिक मत को अनुभववाद की संज्ञा दिया है। उसका कहना है कि जब मैंने सभ्यताओं की उत्पत्ति से संबंधित अपने प्रश्न के उत्तर स्वरूप स्पेंगलर की पुस्तक को देखा, मैंने पाया कि स्पेंगलर बिना अपनी स्थापनाओं को प्रकाशित किए हुए नितांत मताग्रही और नियतवादी था, जबकि जर्मन प्रागानुभव पद्धति निरर्थक सिद्ध हुई। हमें यह देखना होगा कि अंग्रेजी अनुभववाद से क्या उपलब्ध होता है। टैनबी अपने अनुभववाद को स्पेंगलर और हेगेल से भिन्न मानता है। उसने लिखा है, वह अनुभव जो हम आधुनिक विश्व में अर्जित कर रहे थे 1914 की घटनाओं के रूप में उन्हें थ्यूसीडाइडिस ने अपने समय में अनुभूत किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि थ्यूसीडाइडिस इससे पहले इस धरातल पर हो चुका था। वह और उसकी पीढ़ी उन ऐतिहासिक अनुभवों की दृष्टि से मुझसे और वह मेरी पीढ़ी दोनों से आगे थे जिन तक हम पहुंचे थे। वस्तुतः उसका वर्तमान मेरा भविष्य रहा था। इस स्थिति ने कालक्रम निर्धारण की उस व्यवस्था को निरर्थक ठहरा दिया। पृष्ठ संख्या 114, जिसके अंतर्गत मेरा युग आधुनिक और थ्यूसीडाइडिस का युग प्राचीन था। कालक्रम कुछ भी कहे, दार्शनिक स्तर पर थ्यूसीडाइडिस का युग और मेरा युग समकालीन सिद्ध हो चुके थे। इस प्रकार टैनबी ने अपने समकालीन घटित प्रथम विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशंस, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका और रूस का दो शक्ति गुटों में विभाजन आदि घटनाओं का अनुभव टैनबी ने स्वयं किया था। इसलिए उसने इतिहास में समसामयिकता के सिद्धांत को अनुभववाद के नाम पर स्वीकारा। सभ्यताओं का वर्गीकरण। टैनबी ने वर्तमान जगत को 5 सभ्यताओं में विभक्त किया। पश्चिमी यूरोप अथवा पश्चिमी ईसाइयत, पूर्वी यूरोप अथवा बाइजेंटाइन अथवा पूर्वी ईसाइयत, इस्लाम, भारत, हिंदू और सुदूर पूर्वी जगत। इन सभ्यताओं के पीछे क्रमशः यूनानी, रोमी, हेलेनिक, सीरियाई, हिंदी, इंडिक और चीनी क्सनिक सभ्यताएं प्रच्छन्न हैं। ये प्राचीन सभ्यताएं भी क्रमशः मिनोअन, बेबीलोनियन, हिट्टी सभ्यताओं का पर आधारित है। हिंदी और चीनी सभ्यताएं स्वयंभू हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीनतम सभ्यता मिश्री सुमेरी है। अमेरिका में मुकेटिक और मवीशक सभ्यताएं मिलती हैं। ये मानव सभ्यता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त वहां एक और इंडियन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। इस प्रकार इतिहास में ये 18 सभ्यताएं पाई जाती हैं। उपर्युक्त सभ्यताओं में 3 के 2-2 उपभेद हो गए हैं। इस्लामी सभ्यता अरबी और ईरानी सभ्यताओं में विभक्त हो गई है। प्राच्य ईसाई सभ्यता अनातोलिया और रूस की सभ्यताओं में बट गई है। सुदूरवर्ती सभ्यता चीन और जापान की सभ्यताओं के रूप में सामने आती है। इस प्रकार सभ्यताओं की संख्या 29 ही हो पाती है। इसके अतिरिक्त चीन 3 भग्न सभ्यताएं हैं, सुदूरवर्ती ईसाइयत, सुदूर पश्चिमी ईसाइयत तथा स्कैंडिनेवियन। इनके प्रसव काल में ही इन्हें परिस्थितियों की इतनी कठोर चुनौती सहन करनी पड़ी कि इनका पूर्ण प्रकटीकरण अवरुद्ध हो गया। 5 सभ्यताएं ऐसी हुई कि उनका आविर्भाव तो हो गया किंतु परिस्थितियों ने उनकी प्रगति को रोक दिया। ये सभ्यताएं पोलिनेशियन, एस्किमो, घुमक्कड़, स्पतीन और ओस्मानली है। इस प्रकार कुल सभ्यताओं की संख्या 29 है। इनमें से कुछ सभ्यताओं के नाम तो भौगोलिक हैं और कुछ के धार्मिक। कुछ सभ्यताओं की 3-3 पीढ़ियां मिलती हैं, जैसे मिनोअन, यूनानी, रोमन, पाश्चात्य और प्राच्य ईसाइयत। कुछ की 2 पीढ़ियां मिलती हैं, जैसे हिंदी और हिंदू चीनी और सुदूरवर्ती मायन और मेविशक। सीरियाई और इस्लामी कुछ एक ही पीढ़ी पर समाप्त हुई, जैसे मिस्री और इंडियन। टैनबी स्पेंगलर की तरह सभ्यताओं की विशेषताएं निश्चित कर पाते हैं। यूनानी सभ्यता रस प्रधान है, भारतीय सभ्यता धर्म प्रधान है और पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान यंत्र प्रधान है। चुनौती और प्रतिक्रिया, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। टैनबी ने समाज में सभ्यताओं की प्रवृत्ति की धारणा के संबंध में कहा है कि किसी चुनौती चैलेंज की पृष्ठ संख्या 115 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के फलस्वरूप समाज स्थिरता और जड़ता को छोड़कर प्रगतिशीलता और चैतन्य की प्रवृत्ति ग्रहण करता है। चुनौती विरोध और अनुक्रिया के इस विचार को लागू करने के लिए व्यक्ति का उसके वातावरण के संदर्भ में पुनः अध्ययन किया जाता है। जाति और वातावरण को एक नए संदर्भ में समझा जा सकता है, क्योंकि एक अज्ञात तत्व ऐसा होता है जो सर्वाधिक सचेत व्यक्तियों की अवज्ञा करता है। यह तत्व अग्नि परीक्षा के वक्त व्यक्तियों की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। तत्पश्चात हमें विभिन्न सभ्यताओं की उत्पत्ति के विषय में पता लगता है। उदाहरण के लिए मिश्र की सभ्यता का जन्म अफ्रीका एशिया मरुस्थल शुष्कन की चुनौती के फलस्वरूप विकसित हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुपयुक्त भौगोलिक स्थितियां अधिक सक्षम रूप से उत्तरदायी होती हैं। टैनबी से चुनौती चैलेंज तथा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के आधार पर संस्कृतियों का अध्ययन किया है। चुनौती समस्या की उत्पत्ति होती है, प्रतिक्रिया उसका समाधान प्रस्तुत करती है। चुनौती सामाजिक समस्या है, प्रतिक्रिया समस्या का समाधान है। चुनौती प्रश्न है और प्रतिक्रिया उत्तर है। टैनबी के अनुसार चुनौतियों के सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति को उन्होंने विकास कहा है। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है। यह सृजनात्मक व्यक्ति वर्ग निर्गमन विड्रॉल और प्रत्यागमन रिटर्न की प्रवृत्तियों द्वारा कार्य करते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने पहले क्लाइव वेलचली लॉर्ड डलहौजी लिटन तथा कर्जन जैसे कठोर नीति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को भेजा। उसके पश्चात नरम नीति वाले वेटिंग कार्नवालिस तथा रिपन जैसे वायसरायों को भेजकर शक्ति का संगठन किया। टैनबी के मतानुसार कठोर दुर्गम भूमि नए देश आघात दबाव और दंड की यातना से मनुष्य में चुनौतियों की प्रतिक्रिया की शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के द्वारा मनुष्य चुनौती का उत्तर तो देता ही है, साथ ही एक नई चुनौती को अपने सामने खड़ा कर देता है। जिस प्रतिक्रिया और उत्तर से एक चुनौती समाप्त होती है, उसी से दूसरी चुनौती उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य को फिर से उस दूसरी चुनौती का उत्तर देना पड़ता है। चुनौतियों के इस प्रकार क्रमशः सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति का नाम विकास ग्रोथ है। चुनौतियों का सफल उत्तर देने के लिए मनुष्य को अपने भीतर एक आंतरिक संतुलन स्थापित करना पड़ता है। इसका नाम आत्मनियमन सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इस आत्मनियमन की प्रवृत्ति का बाह्य रूप एक कम जटिल और अधिक समुन्नत जीवन शैली का आविर्भाव है। इस प्रवृत्ति को सूक्ष्मीकरण इथेरियलाइजेशन कहते हैं। विरोध चुनौती और पृष्ठ संख्या 116 अनुक्रिया के इस नियम की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। जितनी अधिक चुनौतियां होंगी उसी अनुपात में प्रेरणा होगी। सर्वाधिक प्रेरणास्पद चुनौती अनुभव और उसके आधिक्य के साधन के रूप में प्राप्त होती है, परंतु एक निश्चित अनुपात के बाद चुनौतियों के अनुपात में वृद्धि हो और उसके साथ उसी अनुपात में अनुक्रिया की अंतःक्रिया ह्रासमान उपलब्धि के नियम से संचालित है। अतः प्रोफेसर टैनबी का यह निष्कर्ष है कि कठिनता का एक निर्धारित अनुपात है जिसके अंतर्गत प्रेरणा चरम बिंदु पर होती है। वह इस स्थिति को चुनौती और विरोध को सर्वाधिक अनुपात की स्थिति न मानकर इष्टतम श्रेष्ठतम अनुपात की स्थिति मानता है। सामाजिक सभ्यता का विकास तथा विनाश। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों क्रिएटिव पर्सनालिटीज एंड माइनॉरिटीज का कार्य है, जो जनता के सामान्य स्तरों को अपनी प्रतिभा के आकर्षण द्वारा अपनी ओर खींच लेते हैं। यह सृजनात्मक व्यक्तित्व और वर्ग निर्गमन विड्रॉल और प्रत्यागमन रिटर्न की प्रक्रिया द्वारा कार्य करते हैं। कुछ समय के लिए संसार से अलग हो जाते हैं और शक्ति का संचय करते हैं और फिर संसार में वापस आकर अपूर्व वेग से सर्जन कार्य में संलग्न हो जाते हैं। टैनबी ने इस प्रक्रिया के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह प्रक्रिया बुद्ध जैसे महात्माओं पर तो लागू हो सकती है, किंतु थ्यूसिडाइटिस, दांते और मेकियावली पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनका तथाकथित निर्गमन उनकी इच्छा के प्रतिकूल था। उन्हें इसका बहुत खेद भी रहा। किसी सभ्यता का विकास कैसे होता है, इस विषय में टैनबी की अपनी मान्यता है। सभ्यता का विकास तभी होता है जब व्यक्ति, अल्पसंख्यक वर्ग या सामाजिक वर्ग निरंतर आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है, अर्थात चुनौतियों का जवाब मिलता है, जिसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप नई चुनौतियों का जन्म होता है और पुनः तत्संबंधी सामाजिक वर्ग उसका उत्तर देता है। इसी क्रम की निरंतरता में सभ्यता का विकास निहित है। टैनबी के अनुसार सैनिक या सामाजिक शक्ति का विकास सभ्यता के विकास के लक्षण नहीं है, इसके विपरीत यह सभ्यता के पतन का संकेतक है। इसी प्रकार सभ्यता का भौगोलिक विस्तार या वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां सभ्यता के विकास के द्योतक नहीं है। उसके विचार से सभ्यता का विकास आंतरिक प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के लिए आत्मनिश्चय आवश्यक लक्षण है। सभ्यता का अपना पृथक परिवेश बनता है, जिसमें उसकी स्वयं की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात बाह्य सृष्टि से आंतरिक सृष्टि में क्रिया होती है। सभ्यता के विकास का नेतृत्व हमेशा रहस्यवादियों ने किया। सभ्यता के विकास और विनाश का क्रम टैनबी के पृष्ठ संख्या 117 अनुसार एक संकटपूर्ण प्रक्रिया है, जो अनुलिखित प्रकार से चलती रहती है। सर्जन तथा विसर्जन, रैली एंड राउट। विकास की अवस्था के बाद जो ह्रास और पतन की अवस्था के मुकाबले में बहुत छोटी और अत्यंत स्थायी, अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है, सभ्यता का क्षय शुरू हो जाता है। इस ह्रास और क्षय की प्रक्रिया के संगठन, रैली और विघटन, राउट का क्रम चलता रहता है। कभी सभ्यता कुछ संभल जाती है, फिर गिरने लगती है, फिर कुछ संभल जाती है और अंत में जब इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो गिरकर नहीं उठती। यदि विकास काल एज ऑफ ग्रोथ को संगठन, रैली मान लिया जाए, तो इसके अनंतर जो विघटन, राउट होता है, इस संकट काल टाइम ऑफ ट्रबल्स में अभिव्यक्त होता है। इस संकट काल के बाद फिर एक संगठन आता है जिसका नाम सार्वभौमिक राज्य, यूनिवर्सल स्टेट है, किंतु इस संभाल के बाद फिर विघटन होने लगता है। इसे व्यवधान काल, इंटर रेगुनम कहते हैं। इसके बाद सभ्यता का जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु इन कालों में से प्रत्येक में संगठन के बाद विघटन का क्रम चलता रहता है। संकट काल में संगठन के बाद विघटन होता है, सार्वभौमिक राज्य में विघटन के बाद संगठन होता है। अतः ह्रास और पतन का सामान्य क्रम इसी प्रकार है, विघटन संगठन, संगठन विघटन, संगठन विघटन। इसके अनुसार सभ्यताओं का विघटन नियति बाधित नहीं है और न ही स्पेंगलर के सिद्धांत के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के पतन के आधार पर भावी सभ्यताओं की कुंडली ही बनाई जा सकती है। इस प्रकार सभ्यता का विघटन न तो भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होने से होता है और न ही इसका कारण मानव जन्म या नैसर्गिक विपत्तियां हैं। वस्तुतः सभ्यता विघटन का आत्मघात है। जब व्यक्तियों या अल्पसंख्यकों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास होता है, तब सभ्यता का विघटन होता है। विघटन होने के बाद मेधावी के अनुकरण का प्रश्न ही नहीं रहता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि पहले समाज में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास हुआ, मेधावियों ने शक्ति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहा, लेकिन सामान्य जन जड़ होने के कारण वैचारिक परिवर्तन संभव नहीं हुआ, जिसका परिणाम था संघ भेद या सभ्यता का विघटन, अर्थात व्यक्तियों में क्रियात्मक शक्ति का ह्रास ही टैनबी के विचार में सभ्यता के विघटन का मूल कारण है, जिसे उसने आत्मघात की संज्ञा दी है। ख, जीर्णावस्था एवं विकीर्णावस्था, ब्रेकडाउन एंड डिसइंटीग्रेशन। टैनबी के अनुसार ह्रास चेतन के युग में दो पक्ष होते हैं, जीर्णावस्था और विकीर्णावस्था। जीर्णावस्था में जो अधोमुखी प्रवृत्तियां प्रस्फुटित होती हैं, दूसरे पक्ष में भी विकसित हो जाती हैं। इन प्रवृत्तियों के विकास का सबसे प्रमुख रूप सामाजिक व्यवस्था का दो पक्षों में पृष्ठ संख्या 118 विभाजन होता है। अधिकारी वर्ग डोमिनेंट माइनॉरिटी और दलित वर्ग प्रोलिटेरियर। दलित वर्ग के दो भाग होते हैं, समाज के अंदर का दलित वर्ग इंटरनल प्रोलिटेरियर और समाज के बाहर का दलित वर्ग एक्सटर्नल प्रोलिटेरियर, जो उस सभ्यता का ही अंग होता है जिसमें सीमावर्ती घुमक्कड़ बर्बर जातियां सम्मिलित होती हैं। यह सामाजिक व्यवस्था का विभाजन सिज्म इन द बॉडी सोशल, एक आंतरिक आत्मा के विभाजन सिज्म इन द सोन का बाह्य प्रतीक होता है। एक आध्यात्मिक विभाजन विरोधी व्यवहार और विचार पद्धतियों में परिलक्षित होती है। आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल और आत्मविसर्जन अवाउन बलिदान मिटरडम और पलायनवाद ट्रेंसी पाप चेतना सेंस ऑफ सिन और क्षण भावना सेंस ऑफ ड्रिक्ट निष्पक्षता डिटैचमेंट और आध्यात्मिक परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन पुराण पंथिता आर्केइज्म और भविष्यवाद फ्यूरिज्म अवस्था और संकट की भावना सेंस ऑफ प्रेमिस क्विटी और ग्राम्यता वल्सराइजेशन। किंतु इन मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसी न किसी रूप में ये इतिहास के प्रत्येक युग में विद्यमान रहती हैं। जैसा कि वितरिम ए सोरोकिन ने सिद्ध किया है, इतिहास के आवर्तन परिवर्तन में भावना प्रधान आइडिएशनल और गुरचता प्रधान सेंसेट प्रवृत्तियों का क्रम दोलायमान रहता है। जब तक जनता का दृष्टिकोण सृजनात्मक रहता है, इन दोनों प्रवृत्तियों में संतुलन बना रहता है। किंतु जब समाज निष्क्रिय और निश्चेष्ट होने लगता है तो इनका प्रधान एक पक्षी हो जाता है। सभ्यता और धर्म। टैनबी के मतानुसार सभ्यता का उद्देश्य ही यह है कि धर्म को जन्म देने के लिए एक विशीर्ण हो जाए, वह विशीर्ण हो जाए। अतः सभ्यता का विघटन एक दिव्य क्षण होता है, क्योंकि तब धर्म जन्म लेता है। यदि सभ्यताओं के विकास एवं विलय और उत्थान एवं पतन को पहिए मान ले तो इनकी गति के फलस्वरूप जो रथ आगे बढ़ता है वह धर्म है। धर्म का प्रशासनिक और संस्थापक रूप संघ होता है, जिसके ऊपर सार्वभौमिक राज्य का प्रतिबिंब मात्र होता है। व्यवधान काल इंटरनेग्रम में जब सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो धर्म संघ चर्चा शांति और शासन की उन संस्थाओं को सुरक्षित रखता है जिन्हें वह धर्म सार्वभौमिक राज्य से ग्रहण करता है। इस प्रसंग में टैनवी यूरोपीय निर्देशन से परिबद्ध हो जाते हैं और एशिया की स्थिति को भूल ही जाते हैं। यूरोप में निस्संदेह रोम के पतन के बाद रोम कैथोलिक चर्च ने शासन को बहुत संभाला, किंतु चीन और भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती। जब राज्य के क्षीण होने पर धार्मिक संप्रदायों ने शासन सूत्र संभाला हो, मध्य पूर्व में खिलाफत की संस्था में धार्मिक और लौकिक शक्ति अवश्य केंद्रित हुई, किंतु इसका स्वरूप कैथोलिक चर्च से नितांत भिन्न रहा है। इससे स्पष्ट है कि टैनबी ने यहाँ पर विको के समान इतिहास दर्शन के सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि टैनबी प्रारंभ में सभी पृष्ठ संख्या 119 सभ्यताओं को दार्शनिक रूप से एक मानता था और अब देवशास्त्र के आधार पर महान धर्मों को एक मानता है। टैनबी के अनुसार चार महान धर्म हैं, हिंदू ईसाई मुस्लिम एवं महायान बौद्ध धर्म। इससे स्पष्ट है कि टैनबी का इतिहास दर्शन सापेक्षतावादी है। सभ्यताओं का पुनर्जन्म एवं भविष्य। तैनबी के अनुसार सभ्यताओं का पारस्परिक संपर्क जैसा देश की परिधि में चलता है, ऐसा ही काल के परिधि में भी होता है। दूसरे प्रकार के संपर्क से पुनर्जन्म रेनेसांस की प्रक्रिया चलती है। पुनर्जन्म का अर्थ मृत सभ्यता के प्रेत को जागृत करती है। सामान्यतः एक जीवित सामयिक सभ्यता की चुनौती के फलस्वरूप दूसरी सभ्यता मृत सभ्यता के प्रेत को जागृत है, किंतु कभी कभी यह प्रेत उस सभ्यता से ऐसा चिपटता है कि उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस पुनर्जन्म से या तो सभ्यता प्रगति करने लगती है या निष्क्रिय हो जाती है। इस प्रगति को टैनबी ने एंटी या कसूत एंटियन रिबाउंड और निष्क्रियता को एंटलांटस की मूर्छा स्टांट्स की संज्ञा दी है। प्रत्येक पुनर्जन्म इतिहास की अक्षुण्णता का परिचायक है। वास्तव में अतीत और वर्तमान का संबंध इतिहास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। कभी यह अतीत का प्रभाव कुछ अधिक स्पष्ट हो जाता है, कभी कम, किंतु यह सदैव विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त जब किसी अतीत युग का प्रभाव वर्तमान पर पड़ता है तो इसके साथ अनेक अन्य तत्व सम्मिलित हो जाते हैं। टैनबी के मतानुसार और सब सभ्यताएं तो समाप्त हो चुकी हैं, केवल 5 शेष हैं। इनमें से 4 अंतिम सांस ले रही हैं। केवल एक ही सभ्यता जीवित है, वह पश्चिमी यूरोप की सभ्यता है। अपने इतिहास के अध्ययन के आधार पर टैनबी ने इस सभ्यता के भविष्य की गवेषणा करके इसकी जन्म पत्रिका लिखने की चेष्टा की है। उन्होंने इस सभ्यता के पश्चिमी विभाग का संकट काल 1378 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक और इसका सार्वभौमिक राज्य 1797 से 1814 तक का नेपोलियन का साम्राज्य निश्चित किए हैं और इसके पूर्वी विभाग का संकटकाल 1126 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक और सार्वभौमिक राज्य 1528 से 1928 तक का डेन्यूबी साम्राज्य निश्चित किए। उनके मतानुसार 16वीं शती के धर्म संबंधी युद्ध इस सभ्यता के ह्रास की जीर्णावस्था के स्पष्ट प्रतीक है, किंतु टैनबी बाद में इस स्थापना से हट गए हैं और यह मान बैठे हैं कि इस सभ्यता का संकट काल अभी चल रहा है और इसका सार्वभौमिक राज्य भविष्य के गर्भ में है और हमें केवल यह देखना है कि इस राज्य का आविर्भाव युद्ध और हिंसा से होता है या सहयोग और स्वेच्छा से। इसके अतिरिक्त टैनबी यह मानते हैं कि धर्म के जन्म के लिए सभ्यता का विघटन अनिवार्य है। इस दृष्टि से वर्तमान सभ्यता का क्षय अवश्यंभावी है, किंतु इस पृष्ठ संख्या 120 स्थल पर समस्त ऐतिहासिक कालक्रम को गड़बड़ करके टैनबी यह कह बैठते हैं कि ईसा मसीह का क्रास पर निधन एक अर्वाचीन घटना है, क्योंकि समय के विशाल मानदंड पर 20 शताब्दियां एक आंख की झपकी से अधिक लंबी नहीं होती। यहाँ टैनबी अपने सारे दर्शन को उलट पुलट देते हैं। पश्चिमी सभ्यता का ह्रास वास्तव में वर्तमान काल की प्रमुख घटना पूर्वी सभ्यता द्वारा पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता का पराभव है। व्यक्तिवाद पर आधारित यह सभ्यता अब सामूहिकता पर निर्भर प्राचीन सभ्यता के सामने घुटने टेक रही है। प्रत्येक देश में पश्चिमी ढंग की राष्ट्रीयता, अर्थनीति और जनतंत्र का ह्रास हो रहा है, अतः पश्चिमी जनता इस क्रांति से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। टैनबी ने उसे साहस, सांत्वना और प्रेरणा देने की चेष्टा की है। जिस प्रकार संत अगस्तीन ने लौकिक साम्राज्य के पतन की चुनौती का आध्यात्मिक उत्तर दिया था, उसी प्रकार टैनबी पाश्चात्य सभ्यता के ह्रास की चुनौती की ईसाई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। अतः हेनरी एमर बर्नस ने उनके इतिहास दर्शन को 9 अगस्तीन वाद नाम से अभिहित किया है, किंतु अपने एक बाद के लेखक में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए टैनबी ने लिख दिया है कि यहूदी परंपरा पर आश्रित ईसाई धर्म को वे विश्व की आशा का केंद्र नहीं समझते, बल्कि भारतीय समन्वय पर आधारित हिंदू और बौद्ध धर्मों में मानव समृद्धि और परित्राण की संभावना का दर्शन करते हैं। उन्होंने इसी भारतीय दृष्टिकोण से अपने इतिहास के अध्ययन के अंतिम 4 भागों का प्रणयन किया है। टैनबी का महत्व। टैनबी के सिद्धांतों और विचारों को उपयुक्त विवेचन से उनके इतिहास दर्शन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः टैनबी का दर्शन इतना जटिल और विस्तृत है कि उसके सर्वांगीण परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र ग्रंथ अपेक्षित है। प्रस्तुत अध्ययन में तो एक हल्की सी आलोचनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इससे इतना स्पष्ट है कि टैनबी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उनकी विद्वत्ता सर्वग्राहिणी है। उन्होंने राजनीति को प्रमुखता न देकर संस्कृति और धर्म को प्रधानता दी है और उनका ध्यान विशाल सामाजिक आंदोलनों और परिवर्तनों की ओर आकृष्ट हुआ है। उनकी यह मान्यता कि किसी समाज का विकास और ह्रास उसकी आंतरिक शक्ति और दुर्बलता के कारण होता है नितांत सारगर्भित और गंभीर है। उनका यह विचार भी बहुत ठीक है कि विश्व इतिहास का ढांचा सभ्यताओं और समाजों के संपर्कों से निर्मित हुआ है। वर्तमान स्थिति का अध्ययन करते हुए वे मानते हैं कि समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय और आर्थिक विषमताओं का निराकरण इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तथात्मक पृष्ठ संख्या 121 दृष्टि से तो उनकी कृति अद्वितीय है। आलोचना: टैनबी के मत का खंडन करने वालों में इतिहासकार पीटर गिल सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। प्रोफेसर गिल कहते हैं कि जब टैनबी के स्टडी ऑफ हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हम उसके दृष्टि से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब यह कहता है कि वह अनुभव सिद्ध आधारों पर अपना निष्कर्ष निकाल रहा है, वास्तविकता यह है कि उसकी सारी प्रणाली का विकास, उनका खोज और वे नियम जिनके आधार पर सभ्यता विकसित होती है, इनमें से कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। E.H. कार भी टैनबी की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उसके लिए इतिहासकार कहीं इतिहास के क्षेत्र में से परे मिश्रित वाद में है। टैनबी इतिहासकार को पसंद नहीं करता क्योंकि उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक होता है। ट्रीटर गिल कहता है कि टैनबी के तथ्य खरे नहीं उतरते, वे मनमाने ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। एक दूसरे उच्च इतिहासकार का कहना था कि किसी भी सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा को नहीं मापा जा सकता। टैनबी ने जिस प्रकार सभ्यताओं का वर्गीकरण किया है वह समय के बाहर है। किसी भी सभ्यता के विषय में निश्चित रूप से कोई अंतिम मत प्रकट करना मनुष्य की बुद्धि की सामर्थ्य के बाहर है। इसी कारण टैनबी का वर्गीकरण भी त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण रहे हैं। जिस प्रकार उसने सभ्यताओं को सरल बना दिया है, उसके विषय में टिप्पणी करते हुए E.H. कार का कथन है कि सच स्कीम मेक नो सेंस इन देमसेल्व्स।